पहला अंक, पहला दृश्य। समय 9 बजे रात्रि। यजीद, जुहाक, शम्स और कई दरबारी बैठे हुए हैं। शराब की सुराही और प्याला रखा हुआ है। यजीद, नगर में मेरी खिलाफत का ढिंढोरा पीट दिया गया। जुहाक, कोई गली, कूचा, नाका, सड़क, मस्जिद, बाजार, खानकाह ऐसा नहीं है जहां हमारे ढिंढोरे की आवाज़ न पहुंची हो। यह आवाज़ वायुमंडल को चीरती हुई हिजाज, यमन, इराक, मक्का मदीना में गूंज रही है और उसे सुनकर शत्रुओं के दिल दहल उठे हैं। यजीद, नक्कारची को खिलअत दिया जाए। जुहाक, बहुत खूब अमीर। यजीद, मेरी बैयत लेने के लिए सबको हुक्म दे दिया गया। जुहाक, अमीर के हुक्म देने की ज़रूरत न थी, कल सूर्योदय से पहले सारा शाम बैयत लेने को हाजिर हो जाएगा। यजीद, शराब का प्याला पीकर, नबी ने शराब को हराम कहा है, यह इस अमृत रस के साथ कितना घोर अन्याय है। उस समय के लिए यह निषेध सर्वथा उचित था, क्योंकि उन दिनों किसी को यह आनंद भोगने का अवकाश न था, पर अब वह हालात नहीं है। तख्त पर बैठे हुए खलीफा के लिए ऐसी नियामत हराम समझने से तो यह कहीं अच्छा है कि वह खलीफा ही न रहे। क्यों जहा, कोई कासिद मदीने भेजा गया? जुहाक, अमीर के हुक्म का इंतजार था। यजीद, जुहाक, कसम है अल्लाह की, मैं इस विलम्ब को कभी क्षमा नहीं कर सकता। फौरन कासिद भेजो और वलीद को सख्त ताकीद लिखो कि वह हुसैन से मेरे नाम पर बैयत ले, अगर वह इनकार करें तो उन्हें कत्ल कर दे, इसमें जरा भी देर न होनी चाहिए। जुहाक, या मौला, मेरी तो अर्ज है कि हुसैन कबूल भी कर लें तो भी उनका जिंदा रहना अबू सिफियान के खानदान के लिए उतना ही घातक है जितना किसी सर्प को मारकर उसके बच्चे को पालना। हुसैन जरूर दावा करेंगे। यजीद, जुहाक, क्या तुम समझते हो कि हुसैन कभी मेरी बैयत कबूल कर सकते हैं? यह मुहाल है, असंभव है। हुसैन कभी मेरी बैयत न लेगा, चाहे उसकी बोटियां काट काट कर कौओं को खिला दी जाएं। अगर तकदीर पलट सकती है, अगर दरिया का बहाव उलट सकता है, अगर समय की गत रुक सकती है, तो हुसैन भी मेरे नाम पर बैयत ले सकता है। मगर बैयत ले चुकने के बाद मुमकिन है तकदीर पलट जाए, दरिया का बहाव उलट जाए, समय की गत रुक जाए, पर हुसैन दावा नहीं कर सकता। उससे बैयत लेने का मतलब ही यही है कि उसे इस जहान से रुखसत कर दिया जाए। हुसैन ही मेरा दुश्मन है, मुझे और किसी का खौफ नहीं। मैं सारी दुनिया की फौजों से नहीं डरता, मैं डरता हूँ इसी निहत्थे हुसैन से। प्याला भरकर पी जाता है। हुसैन ने मेरी नींद, मेरा आराम हराम कर रखा है। अबू सिफियान की संतान हाशिम के बेटों के सामने सिर न झुकाएगी, खिलाफत को मुल्लाओं के हाथों में फिर न जाने देंगे। इन्होंने छोटे बड़े की तमीज उठा दी। हर एक तहकान समझता है कि मैं खिलाफत की मसनत पर बैठने लायक हूँ और अमीरों के दस्तरखान पर खाने का मुझे हक है। मेरे मरहूम बाप ने इस भ्रांति को बहुत कुछ मिटाया और आज खलीफा शान और शौकत में दुनिया के किसी ताजदार से शर्मिंदा नहीं हो सकता। जूते सीने वाले और रूखी रोटियां खाकर खुदा का शुक्रिया अदा करने वाले खलीफों के दिन गए। जुहाक, खुदा न करे वह दिन फिर आए। अब्दुल शम्स, इन हाशिमियों से हमें उस्मान के खून का बदला लेना है। यजीद, खजाना खोल दो और रियाया का दिल अपनी मुट्ठी में कर लो। रुपया खुदा के खौफ को दिल से दूर कर देता है। सारे शहर की दावत करो, कोई मुजायका नहीं अगर खजाना खाली हो जाए। हर एक सिपाही को निहाल कर दो और अगर इतनी रियायतें करने पर भी कोई तुमसे खींचा रहे तो उसे कत्ल कर दो। मुझे इस वक्त रुपये की ताकत से धर्म और भक्ति को जीतना है। हिंदा का प्रवेश। यजीद, हिंदा, तुमने इस वक्त कैसे तकलीफ की? हिंदा, या अमीर, मैं आपकी खिदमत में सिर्फ इसलिए हाजिर हुई हूँ कि आपको इस इरादे से बाज रखूँ। आपको अमीर मुआविया की कसम, अपने दीन को, अपनी नजात को, अपने ईमान को यूँ न खराब कीजिए। जिस नबी से आपने इस्लाम की रोशनी पाई, जिसकी जात से आपको यह रुतबा मिला, जिसने आपकी आत्मा को अपने उपदेशों से जगाया, जिसने आपको अज्ञान के गढ़ से निकाल कर आफताब के पहलू में बिठा दिया, उसी खुदा के भेजे हुए बुजुर्ग के नवासे का खून बहाने के लिए आप आमादा हैं? यजीद, हिंदा खामोश रहो। हिंदा, कैसे खामोश रहूं? आपको अपनी आंखों से जहन्नुम के गार में गिरते देखकर खामोश नहीं रह सकती। आपको मालूम नहीं कि रसूल की आत्मा स्वर्ग में बैठी हुई आपके इस अन्याय को देखकर आपको लानत दे रही होगी, और हिसाब के दिन आप अपना मुंह उन्हें न दिखा सकेंगे। क्या आप नहीं जानते आप अपनी नजात का दरवाजा बंद कर रहे हैं? यजीद, हिंदा, ये मजहब की बातें मजहब के लिए हैं, दुनिया के लिए नहीं। मेरे दादा ने इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि इससे उन्हें दौलत और इज्जत हाथ आती थी। नजात के लिए वह इस्लाम पर ईमान नहीं लाए थे, और न मैं ही इस्लाम को नजात का जामिन समझने को तैयार हूँ। हिंदा, अमीर, खुदा के लिए यह कुआ के मुंह से न निकालो। आपको मालूम है इस्लाम ने अरब से अधर्म के अंधेरे को कितनी आसानी से दूर कर दिया। अकेले एक आदमी ने काफिरों का निशान मिटा दिया। क्या खुदा की मर्जी बिना यह बात हो सकती थी? कभी नहीं। तुम्हें मालूम है कि रसूल हुसैन को कितना प्यार करते थे। हुसैन को वह कंधों पर बिठाते और अपनी नूरानी दाढ़ी को उनके हाथों से नुचवाते थे। जिस माथे को तुम अपने पैरों पर झुकाना चाहते हो, उसके रसूल बोसे लेते थे। हुसैन से दुश्मनी करके तुम अपने हक में कांटे बो रहे हो। खिलाफत उसकी है जिसे पंच दे, यह किसी की मीरास नहीं है। तुम खुद मदीने जाओ और देखो कौम किस पर खिलाफत का बार रखती है। उसके हाथों पर बैयत लो। अगर कौम तुमको इस रुतबे पर बैठा दे तो मदीने में रहकर शौक से इस्लाम की खिदमत करो, मगर खुदा के वास्ते यह हंगामा न उठाओ। जाती है। यजीद, सरजून रूमी को बुला लो। सरजून आकर आदाब बजा लाता है। यजीद, अपने वालिद मरहूम की खिदमत जितनी वफादारी के साथ की, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मगर इस वक्त मुझे आपकी पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। बसरे की सूबेदारी के लिए आप किसे तजवीज करते हैं? रूमी, खुदा अमीर को सलामत रखे। मेरे ख्याल में अब्दुल्लाह बिन जियाद से ज़्यादा लायक आदमी आपको मुश्किल से मिलेगा। जियाद ने अमीर मुआविया की जो खिदमत की, वह मिटाई नहीं जा सकती। अब्दुल्लाह उसी बाप का बेटा है और खानदान का उतना ही सच्चा गुलाम है। उसके पास फौरन कासिद भेज दी। यजीद, मुझे जियाद के बेटे से शिकायत है कि उसने बसरे वालों के इरादों की मुझे इत्तिला नहीं दी, और मुझे यकीन है कि बसरे वाले मुझसे बगावत कर जाएंगे। रूमी, या अमीर, आपका जियाद पर शक करना बेजा है। आपके मददगार आपके पास खुद ब खुद न आएंगे। वह तलाश करने से, मिन्नत करने से, रियायत करने से आएंगे। आप ही आप वे लोग आएंगे जो आपकी जात से खुद फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस मनसब के लिए जियाद से बेहतर आदमी आपको न मिलेगा। यजीद, सोचूंगा। शराब का प्याला उठाता है। जुहाक, कोई गीत तो सुनाओ जिसकी मिठास उस फिक्र को मिटा दे जो इस वक्त मेरे दिल और जिगर पर पत्थर की चट्टान की तरह रखी हुई है। जुहाक, जैसा हुक्म, दफ बजाकर गाता है। गाना। सफी थक के बैठे दवा करने वाले, उठे हाथ उठाकर दुआ करने वाले, वफा पर है मरते वफा करने वाले, जफा कर रहे हैं जफा करने वाले, बचाकर चले खाक से अपना दामन, लहत पर जो गुजरी हवा करने वाले, किसी बात पर भी तो कायम नहीं है ये जालिम सितमगर दगा करने वाले, तअज्जुब नहीं है जो अब जहन दे दें ये जिच हो गए हैं दवा करने वाले, समझ लें कि दुश्वार है राजदारी किसी का किसी से गिला करने वाले, अभी है बुतों को खुदाई का दावा, खुदा जाने हैं और क्या करने वाले। दूसरा दृश्य। रात का समय, मदीने का गवर्नर वलीद अपने दरबार में बैठा हुआ। वलीद, स्वगत। मरवान कितना खुदगर्ज आदमी है, मेरा माथा ठोकर भी मुझ पर रोब जमाना चाहता है। उसकी मर्जी पर चलता तो आज सारा मदीना मेरा दुश्मन होता। उसने रसूल के ख़ानदान से हमेशा दुश्मनी की है। कासिद का प्रवेश। कासिद, या अमीर, यह खलीफा यजीद का खत है। वलीद घबरा कर, खलीफा यजीद? अमीर मुआविया को क्या हुआ? कासिद, आपको पूरी कैफियत इस खत से मालूम होगी। खत वलीद के हाथ में देता है। वलीद खत पढ़कर, अमीर मुआविया की रूह को खुदा जन्नत में दाखिल करे, मगर समझ में नहीं आता कि यजीद क्यों कर खलीफा हुए। कौम के नेताओं की कोई मजलिस नहीं हुई और किसी ने उनके हाथ पर बैयत नहीं ली। मदीने भर में यह खबर फैलेगी तो गजब हो जाएगा। हुसैन यजीद को कभी खलीफा न मानेंगे। कासिद दूसरा खत देकर, हुजूर इसे भी देख लें। वलीद खत लेकर पढ़ता है। वलीद हाकिम मदीना को ताकीद की जाती है कि इस खत को देखते ही हुसैन मेरे नाम पर बैयत न लें तो उन्हें कत्ल कर दें और उनका सिर मेरे पास भेज दें। सर्द सांस लेकर फर्श पर लेट जाता है। कासिद, मुझे क्या हुक्म होता है? वलीद, तुम जाकर बाहर ठहरो। दिल में, खुदा वह दिन न लाए कि मुझे रसूल के नवासे के साथ यह घृणित व्यवहार करना पड़े। वलीद इतना बेदीन नहीं है, खुदा रसूल को इतना नहीं भूला है। मेरे हाथ गिर पड़े इससे पहले कि मेरी तलवार हुसैन की गर्दन पर पड़े। काश मुझे मालूम होता कि अमीर मुआविया की मौत इतनी नज़दीक है और उसकी आंखें बंद होते ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा तो पहले ही इस्तीफा देकर चला जाता। मरवान की सूरत देखने को जी नहीं चाहता, मगर इस वक्त उसकी मर्जी के खिलाफ काम करना अपनी मौत को बुलाना है। वह रत्ती रत्ती खबर यजीद के पास भेजेगा। उसके सामने मेरी कुछ भी न सुनी जाएगी। ऐसा अफसर जो माथहतों से डरे, माथहत से भी बदतर है। जिस वजीर का गुलाम बादशाह का विश्वास पात्र हो, उसके लिए जंगल में ऊँट चराना उससे हजार दर्जे बेहतर है कि वह वजीर की मसनत पर बैठे। गुलाम को बुलाता है। गुलाम, अमीर क्या हुक्म फरमाते हैं? वलीद, जाकर मरवान को बुला ला। गुलाम, जो हुक्म। जाता है। वलीद दिल में, हुसैन कितना नेक आदमी है, उसकी जबान से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे मैं क्यों कर बैयत लूँगा। मरवान का प्रवेश। मरवान, इतनी रात गए मुझे आप न बुलाया करें, मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है कि बागियों को इस पर छिपकर हमला करने का मौका दिया जाए। वलीद, तुम्हारा बर्ताव ही क्यों ऐसा हो कि तुम्हारे ऊपर किसी कातिल की तलवार उठे। अभी अभी कासिद मुआविया की मौत की खबर लाया है और यजीद का यह खत भी आया है कि मुझे तुमसे इसकी बाबत सलाह लेनी है। खत देता है। मरवान खत पढ़कर, आह मुआविया, तुमने बेवक्त वफात पाई, तुम्हारा नाम तारीख में हमेशा रोशन रहेगा, तुम्हारी नेकियों को याद करके लोग बहुत दिनों तक रोएंगे। यजीद ने खिलाफत अपने हाथ में ले ली, यह बहुत ही मुनासिब हुआ। मेरे ख्याल में हुसैन को इसी वक्त बुलाना चाहिए। वलीद, तुम्हारे ख्याल में बैयत ले लेंगे? मरवान, गैर मुमकिन, उनसे बैयत लेना उन्हें कत्ल करने को कहना है, मगर अभी मुआविया के मरने की खबर मशहूर न होनी चाहिए। वलीद, इस मामले पर गौर करो। मरवान, गौर की ज़रूरत नहीं, मैं आपकी जगह होता तो बैयत का जिक्र ही न करता, फौरन कत्ल कर डालता। हुसैन के जिंदा रहते हुए यजीद को कभी इत्मीनान नहीं हो सकता। यह भी याद रखिए कि मुआविया के मरने की खबर फैल गई तो न हमारी जान सलामत रहेगी न आपकी। हुसैन से आपका कितना ही दोस्ताना हो, लेकिन वही हुसैन आपका जानी दुश्मन हो जाएगा। वलीद, तुम्हें उम्मीद है कि वह इस वक्त यहाँ आएंगे, उन्हें सुबह हो जाएगा। मारवान, आपके ऊपर हुसैन का इतना भरोसा है तो इस वक्त भी चले आएंगे, मगर आपकी तलवार तेज और खून गर्म रहना चाहिए। यही कारगुजारी का मौका है। अगर हम लोगों ने इस मौके पर यजीद की मदद की तो कोई शक नहीं कि हमारे इकबाल का सितारा रोशन हो जाएगा। वलीद, मरवान, मैं यजीद का गुलाम नहीं, खलीफा का नौकर हूँ, और खलीफा वही है जिसे कौम चुनकर मसनद पर बिठा दे। मैं अपने दीन और ईमान का खून करने से यह कहीं बेहतर समझता हूँ कि कुरान पाक की नकल करके जिंदगी बसर करूँ। मारवान, या अमीर, मैं आपको यजीद के गुस्से से होशियार किए देता हूँ। मेरी और आपकी भलाई इसी में है कि यजीद का हुक्म बजा लाएं। हमारा काम उनकी बंदगी करना है, आप दुविधा में न पड़ें। इसी वक्त हुसैन को बुला भेजें। गुलाम को पुकारता है, गुलाम, या अमीर, क्या हुक्म है? मरवान, जाकर हुसैन बिन अली को बुला ला, दौड़ते जाना और कहना कि अमीर आपके इंतजार में बैठे हैं। गुलाम चला जाता है। तीसरा दृश्य। रात का वक्त, हुसैन और अब्बास मस्जिद में बैठे बातें कर रहे हैं। एक दीपक जल रहा है। हुसैन, मैं जब ख्याल करता हूँ कि नाना मरहूम ने तन्हा बड़े बड़े सरकस बादशाहों को पस्त कर दिया और इतनी शानदार खिलाफत कायम कर दी, तो मुझे यकीन हो जाता है कि उन पर खुदा का साया था। खुदा की मदद के बगैर कोई इंसान यह काम न कर सकता था। सिकंदर की बादशाहत उसके मरते ही मिट गई। कैसर की बादशाहत उसकी जिंदगी के बाद बहुत थोड़े दिनों तक कायम रही। उन पर खुदा का साया न था। वह अपनी हवस की धुन में कौमों को फतह करते हैं। नाना ने इस्लाम के लिए झंडा बुलंद किया, इसी से वह कामयाब हुए। अब्बास, इसमें किसको शक हो सकता है कि वह खुदा के भेजे हुए थे। खुदा की पनाह जिस वक्त हजरत ने इस्लाम की आवाज़ उठाई थी। इस मुल्क में अज्ञान का कितना गहरा अंधकार छाया हुआ था। वह खुदा की ही आवाज़ थी जो उनके दिल में बैठी हुई बोल रही थी, जो कानों में पड़ते ही दिलों में उतर जाती थी। दूसरे मजहब वाले कहते हैं इस्लाम ने तलवार की ताकत से अपना प्रचार किया। काश उन्होंने हजरत की आवाज़ सुनी होती। मेरा तो दावा है कि कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं है जिसकी मंशा तलवार से इस्लाम का फैलाना हो। हुसैन, मगर कितने अफसोस की बात है कि अभी से कौम ने उनकी नसीहतों को भूलना शुरू किया और वह नापाक जो उनकी मसनद पर बैठा हुआ है आज खुले बंदों शराब पीता है। गुलाम का प्रवेश। गुलाम, नबी के बेटे पर खुदा की रहमत हो, अमीर ने आपको किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए तलब किया है। अब्बास, यह वक्त वलीद के दरबार का नहीं है। गुलाम, हुजूर कोई ख़ास काम है। हुसैन, अच्छा तू जा, हम घर जाने लगेंगे तो उधर से होते हुए जाएंगे। गुलाम चला जाता है। अब्बास, भाई जान, मुझे तो इस बेवक्त की तलबी से घबराहट हो गई है। यह वक्त वलीद के इजलास का नहीं है। मुझे दाल में कुछ काला नज़र आता है। आप कुछ कयास कर सकते हैं कि किस सिलसिले में बुलाया होगा? हुसैन, मेरा दिल तो गवाही देता है कि एक मुआविये ने वफात पाई। अब्बास, तो वलीद ने आपको इसलिए बुलाया होगा कि आपसे यजीद की बैयत ले। हुसैन, मैं यजीद की बैयत क्यों करने लगा? मुआविया ने भैया इमाम हसन के साथ कसम खाकर शर्त की थी कि वह अपने मरने के बाद अपनी औलाद में से किसी को खलीफा न बनाएंगे। हसन के बाद खिलाफत पर मेरा हक है। अगर मुआविया मर गया है और यजीद को खलीफा बनाया गया है तो उसने मेरे साथ और इस्लाम के साथ दगा की है। यजीद शराबी है, बदकार है, झूठा है, बेदीन है, कुत्तों को गोद में लेकर बैठता है। मेरी जान भी जाए तो क्या, पर मैं उसकी बैयत न अख्तियार करूँगा। अब्बास, मामला नाजुक है। यजीद की जात से कोई बात बईद नहीं। काश हमें मुआविया की बीमारी और मौत की खबर पहले ही मिल गई होती। गुलाम का फिर प्रवेश। गुलाम, हुजूर तशरीफ नहीं लाए, अमीर आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। हुसैन, तुफ है तुझ पर, तू वहाँ पर गया भी कि रास्ते से ही लौट आया? चल मैं अभी आता हूँ, तू फिर न आना। गुलाम, हुजूर, अमीर से जाकर जब मैंने कहा कि वह अभी आते हैं तो वह चुप हो गए, लेकिन मरवान ने कहा कि वह कभी न आएंगे, आपसे दावा कर रहे हैं। इस पर अमीर उनसे बहुत नाराज़ हुए और कहा, हुसैन कौल के पक्के हैं, जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। हुसैन, वलीद शरीफ आदमी है, तुम जाओ हम अभी आते हैं। गुलाम चला जाता है। अब्बास, आप जाएंगे? हुसैन, जब तक कोई सबब न हो किसी की नियत पर शुभा करना मुनासिब नहीं। अब्बास, भैया मेरी जान आप पर फिदा हो, मुझे डर है कि कहीं वह आपको कैद न कर ले। हुसैन, वलीद पर मुझे एतबार है, अबू सुफियान की औलाद होने पर भी वह शरीफ और दीनदार है। अब्बास, आप एतबार करें, लेकिन मैं आपको वहाँ जाने की हरगिज सलाह न दूंगा। इस सन्नाटे में अगर उसने कोई दगा की तो कोई फरियाद भी न सुनेगा। आपको मालूम है कि मरवान कितना दगाबाज और हरामकार है, मैं उसके साए से भी भागता हूँ। जब तक आप मुझे यह इत्मीनान न दिला दीजिएगा कि दुश्मन यहाँ आपका बाल बांका न कर सकेगा, मैं आपका दामन न छोड़ूंगा। हुसैन, अब्बास तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मुझे हक पर इतना यकीन है और मुझ में हक की इतनी ताकत है कि मेरी बात और वलीद तो क्या यजीद की सारी फौज भी मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यकीन है कि मेरी एक आवाज़ पर हजारों खुदा के बंदे और रसूल के नाम पर मिटने वाले दौड़ पड़ेंगे, और अगर कोई मेरी आवाज़ न सुने तो भी मेरे बाजुओं में इतना बल है कि मैं अकेले उनमें से 100 को जमीन पर सुला सकता हूँ। हैदर का बेटा ऐसे गीदड़ों से नहीं डर सकता। जाओ जरा नाना की कब्र की जियारत कर लें। दोनों हजरत मोहम्मद की कब्र के सामने खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध कर दुआ पढ़ते हैं और मस्जिद से निकल कर घर की तरफ चलते हैं। चौथा दृश्य। समय रात, वलीद का दरबार। वलीद और मरवान बैठे हुए हैं। मरवान, अब तक नहीं आए, मैंने आपसे कहा कि वह हरगिज न आएंगे। वलीद, आएंगे और ज़रूर आएंगे, मुझे उनके कौल पर पूरा भरोसा है। मरवान, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्हें अमीर की वफात की खबर लग गई हो और वह अपने साथियों को जमा करके हमसे जंग करने आ रहे हों? हुसैन का प्रवेश। वलीद सम्मान के भाव से खड़ा हो जाता है और दरवाजे पर आकर हाथ मिलाता है। मरवान अपनी जगह पर बैठा रहता है। हुसैन, खुदा की तुम पर रहमत हो। मरवान को बैठे देखकर, मेल फूट से और प्रेम द्वेष से बहुत अच्छा है, मुझे क्यों याद किया है? वलीद, इस तकलीफ़ के लिए माफ़ कीजिए, आपको यह सुनकर अफसोस होगा कि अमीर मुआविया ने वफात पाई। मरवान, और खलीफा यजीद ने हुक्म दिया है कि आपसे उनके नाम की बैयत ली जाए। हुसैन, मेरे नज़दीक यह मुनासिब नहीं है कि मुझ जैसा आदमी छुपे छुपे बैयत ले, यह न मेरे लिए मुनासिब है और न यजीद के लिए काफ़ी। बेहतर है आप एक काम जलसा करें और शहर के सब रईसों और आलिमों को बुलाकर यजीद की बैयत का सवाल पेश करें, मैं भी उन लोगों के साथ रहूँगा और उस वक्त सब के पहले जवाब देने वाला मैं हूँगा। वलीद, मुझे आपकी सलाह माकूल मालूम होती है, बेशक आपके बैयत लेने से वह नतीजा न निकलेगा जो यजीद की मंशा है। कोई कहेगा कि आपने बैयत ली और कोई कहेगा कि नहीं, और इसकी तस्दीक करने में बहुत वक्त लगेगा, तो जलसा करूं? मरवान, अमीर मैं आपको खबरदार किए देता हूं कि इनकी बातों में न आइए, बगैर बैयत लिए इन्हें यहां से न जाने दीजिए, वरना इनसे इस वक्त तक बैयत न ले सकेंगे जब तक खून की नदी न बहेगी, यह चिंगारी की तरह उड़कर सारी खिलाफत में आग लगा देंगे। वलीद, मरवान मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ, चुप रहो। मरवान, हुसैन मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मेरी दोस्ताना सलाह यह है कि आप यजीद की बैयत मंजूर कर लीजिए ताकि आपको कोई नुकसान न पहुँचे, आपस का फसाद मिट जाए और हजारों खुदा के बंदों की जानें बच जाएं। खलीफा आपके बैयत की खबर सुनकर बेहद खुश होंगे और आपके साथ ऐसे सलूक करेंगे कि खिलाफत में कोई आदमी आपकी बराबरी न कर सकेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी जागीरें और वजीफे तो चंद करा दूंगा और आप मदीने में इज्जत के साथ रसूल के कदमों से लगे हुए दीन और दुनिया में सुरखरू होकर जिंदगी बसर करेंगे। हुसैन, बस करो मरवान, मैं तुम्हारी दोस्ताना सलाह सुनने के लिए नहीं आया हूँ, तुमने कभी अपनी दोस्ती का सबूत नहीं दिया और इस मौके पर मैं तुम्हारी सलाह को दोस्ताना न समझ कर दगा समझूं, तो मेरा दिल और मेरा खुदा मुझसे नाखुश न होगा। आज इस्लाम इतना कमज़ोर हो गया है कि रसूल का बेटा यजीद की बैयत लेने के लिए मजबूर हो। मरवान, उनकी बैयत से आपको क्या एतराज है? हुसैन, इसलिए कि वह शराबी, झूठा, दगाबाज, हरामकार और जालिम है। वह दीन के आलिमों की तौहीन करता है। जहाँ जाता है एक गधे पर एक बंदर को आलिमों के कपड़े पहनाकर साथ ले जाता है। मैं ऐसे आदमी की बैयत अख्तियार नहीं कर सकता। मरवान, या अमीर, आप इनसे बैयत लेंगे या नहीं? हुसैन, मेरी बैयत किसी के अख्तियार में नहीं है। मरवान, कसम खुदा की, आप बैयत कबूल किए बिना नहीं जा सकते। मैं तुम्हें यहीं कत्ल कर डालूँगा। तलवार खींच कर बढ़ता है। हुसैन डपट कर, तू मुझे कत्ल करेगा? तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है, दूर रह। एक कदम भी आगे रखा तो तेरा नापाक सिर जमीन पर होगा। अब्बास 30 सशस्त्र आदमियों के साथ तलवार खींचे हुए घुस आते हैं। अब्बास मरवान की तरफ झपट कर, मलऊन यह ले, तेरे लिए दोजख का दरवाज़ा खुला है। हुसैन मरवान के सामने खड़े होकर, अब्बास तलवार म्यान में करो, मेरी लड़ाई मरवान से नहीं यजीद से है। मैं खुश हूँ कि यह अपने आका का ऐसा वफादार खादिम है। अब्बास, इस मरदूद की इतनी हिम्मत कि आपके मुबारक जिस्म पर हाथ उठाए, कसम खुदा की इसका खून पी जाऊँगा। हुसैन, मेरे देखते ही नहीं मुसलमान पर मुसलमान का खून हराम है। वलीद हुसैन से, मैं सख्त नादिम हूँ कि मेरे सामने आपकी तौहीन हुई, खुदा इसका अजाब मुझे दे। हुसैन, वलीद, मेरी तकदीर में अभी बड़ी बड़ी शक्तियाँ झेलनी बदी हैं। यह उस मार्के की तमहीद है जो पेश आने वाला है। हम और तुम शायद फिर न मिलें, इसलिए रुखसत। मैं तुम्हारी मुरव्वत और भलमनसी को कभी न भूलूँगा। मेरी तुमसे सिर्फ इतनी अर्ज है कि मेरे यहाँ से जाने में जरा भी रोक टोक न करना। दोनों गले मिलकर विदा होते हैं। अब्बास और 300 आदमी बाहर चले जाते हैं। मरवान, वलीद, तुम्हारी बदौलत मुझे यह जिल्लत हुई। वलीद, तुम नाशुक्रे हो, मेरी बदौलत तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम्हारी लाश फर्श पर तड़पती नजर आती। मरवान, तुमने यजीद की खिलाफत यजीद से छीन कर हुसैन को दे दी। तुमने अबू सुफियान की औलाद होकर उसके खानदान से दुश्मनी की। तुम खुदा की दरगाह में उस कत्ल और खून के जिम्मेदार होगे जो आज की गफलत या नरमी का नतीजा होगा। मरवान चला जाता है। पांचवां दृश्य। समय आधी रात। हुसैन और अब्बास मस्जिद के सहन में बैठे हुए हैं। अब्बास, बड़ी खैरियत हुई, वरना मलऊन ने दुश्मनों का काम ही तमाम कर दिया था। हुसैन, तुम लोगों की जतन बड़े मौके पर काम आई। मुझे गुमान न था कि ये सब मेरे साथ इतनी दगा करेंगे, मगर यह जो कुछ हुआ आगे चलकर इससे भी ज़्यादा होगा। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि हमें अब चैन से बैठना नसीब न होगा। मेरा भी वही हाल होने वाला है जो भैया इमाम हसन का हुआ। अब्बास, खुदा न करे, खुदा न करे। हुसैन, अब मदीने में हम लोगों का रहना कांटे पर पांव रखना है। भैया शायद नबियों की औलाद शहीद होने ही के लिए पैदा होती है, शायद नबियों को भी होनहार की खबर नहीं होती। नहीं तो क्या नाना की मसनद पर वे लोग बैठते जो इस्लाम के दुश्मन हैं और जिन्होंने सिर्फ अपनी गरज पूरी करने के लिए इस्लाम का स्वांग भरा है? मैं रसूल ही से पूछता हूँ कि वह मुझे क्या हुक्म देते हैं, मदीने में ही रहूँ या कहीं और चला जाऊँ हजरत मोहम्मद की कब्र पर जाकर? ऐ खुदा, यह तेरे रसूल मोहम्मद की खाक है और मैं उनकी बेटी का बेटा हूँ। तू मेरे दिल का हाल जानता है। मैंने तेरी और तेरे रसूल की मर्जी पर हमेशा चलने की कोशिश की है। मुझ पर रहम कर और उस पाक नबी के नाते जो इस कब्र में सोया हुआ है मुझे हिदायत कर कि इस वक्त मैं क्या करूं। रोते हैं और कब्र पर सिर रखकर बैठ जाते हैं। एक क्षण में चौंक कर उठ बैठते हैं। अब्बास, भैया अब यहाँ से चलो, घर के लोग घबरा रहे होंगे। हुसैन, नहीं अब्बास, अब मैं लौट कर घर न जाऊंगा। मैंने ख्वाब देखा कि नाना आए हैं और मुझे छाती से लगाकर कहते हैं, बहुत थोड़े दिनों में तू ऐसे आदमियों के हाथों शहीद होगा जो अपने को मुसलमान कहते होंगे और मुसलमान न होंगे। मैंने तेरी शहादत के लिए करबला का मैदान चुना है। उस वक्त तू प्यासा होगा, पर तेरे दुश्मन तुझे एक बूंद पानी भी न देंगे। तेरे लिए यहाँ बहुत ऊंचा रुतबा रखा गया है, पर वह रुतबा शहादत के बगैर हासिल नहीं हो सकता। यह कहकर नाना गायब हो गए। अब्बास रोकर, भैया, हाय भैया, यह ख्वाब या पेशीन गोई? मोहम्मद हाफिया का प्रवेश। मोहम्मद, हुसैन तुमने क्या फैसला किया? हुसैन, खुदा की मर्जी है कि मैं कत्ल किया जाऊं। मोहम्मद, खुदा की मर्जी खुदा ही जानता है। मेरी सलाह तो यह है कि तुम किसी दूसरे शहर चले जाओ और वहां से अपने कासिदों को उस जवार में भेजो। अगर लोग तुम्हारी बैयत मंजूर कर लें तो खुदा का शुक्र करना, वरना यूं भी तुम्हारी आबरू कायम रहेगी। मुझे खौफ यही है कि कहीं तुम ऐसी जगह न जा फंसो जहां कुछ लोग तुम्हारे दोस्त हों और कुछ तुम्हारे दुश्मन। कोई चोट वगली घूसों की तरह नहीं होती, कोई सांप इतना कातिल नहीं होता जितना आस्तीन का, कोई कान इतना तेज नहीं होता जितना दीवार का, और कोई दुश्मन इतना खौफनाक नहीं होता जितनी दगा। इससे हमेशा बचते रहना। हुसैन, आप मुझे कहाँ जाने की सलाह देते हैं? मोहम्मद, मेरे ख्याल में मक्का से बेहतर कोई जगह नहीं है। अगर कौम ने तुम्हारी बैयत मंजूर की तो पूछना ही क्या, वरना पहाड़ियों की घाटियाँ तुम्हारे लिए किलों का काम देंगी और थोड़े से मददगारों के साथ तुम आज़ादी से जिंदगी बसर करोगे। खुदा चाहेगा तो लोग बहुत जल्द यजीद से बेजार होकर तुम्हारी पनाह में आएंगे। हुसैन, अजीजों को यहाँ छोड़ दूँ? मोहम्मद, हरगिज नहीं, सबको अपने साथ ले जाओ। हुसैन, यहाँ की हालत से मुझे जल्द जल्द इत्तिला देते रहिएगा। मोहम्मद, इसका इत्मीनान रखो। मोहम्मद हुसैन से गले मिलकर चले जाते हैं। अब्बास, भैया आप तो घर चलिए, क्या सारी रात जागते रहिएगा? हुसैन, अब्बास, मैं पहले ही कह चुका कि लौट कर घर न जाऊंगा। अब्बास, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। आप मुझे अपना सच्चा दोस्त समझते हैं या नहीं? हुसैन, खुदा पाक की कसम, तुझसे ज़्यादा सच्चा दोस्त दुनिया में नहीं है। अब्बास, क्यों ना आप इस वक्त यजीद की बैयत मंजूर कर लीजिए। खुदा कारसाज है, मुमकिन है थोड़े दिनों में यजीद खुद ही मर जाए तो आपको खिलाफत आप ही आप मिल जाएगी। जिस तरह आपने मुआविया के ज़माने में सब्र किया, उसी तरह यजीद के ज़माने को भी सब्र के साथ काट दीजिए। यह भी मुमकिन है कि थोड़े ही दिनों में यजीद के जुल्म से तंग आकर लोग बगावत कर बैठें और आपके लिए मौका निकल आए। सब्र सारी मुश्किलों को आसान कर देता है। हुसैन, अब्बास, यह क्या कहते हो? अगर मैं खौफ से यजीद की बैयत कबूल कर लूँ तो इस्लाम का मुझसे बड़ा दुश्मन और कोई न होगा। मैं रसूल को, वालिद को, भैया हसन को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब्बा जान ने शहीद होना कबूल किया पर मुआविया की बैयत न मंजूर की। भैया ने भी मुआविया की बैयत को हराम समझा, तो मैं क्यों खानदान में दाग लगाऊं? इज्जत की मौत बेइज्जती की जिंदगी से कहीं अच्छी है। अब्बास विस्मित होकर, खुदा की कसम, यह हुसैन की आवाज़ नहीं, रसूल की आवाज़ है, और ये बातें हुसैन की नहीं अली की हैं। भैया, आपको खुदा ने अक्ल दी है, मैं तो आपका खादिम हूँ। मेरी बातें आपको नागवार हुई हो तो माफ़ करना। हुसैन अब्बास को छाती से लगाकर, अब्बास, मेरा खुदा मुझसे नाराज़ हो जाए अगर मैं तुमसे ज़रा भी मलाल रखूँ। तुमने मुझे जो सलाह दी वह मेरी भलाई के लिए दी, इसमें मुझे ज़रा भी शक नहीं। मगर तुम इस मुकालते में हो कि यजीद के दिल की आग मेरे बैयत से ठंडी हो जाएगी, हालांकि यजीद ने मुझे कत्ल करने का यह हीला निकाला है। अगर वह जानता कि मैं बैयत ले लूँगा तो वह कोई और तदबीर सोचता। अब्बास, अगर उसकी यह नीयत है तो कलाम पाक की कसम, मैं आपके पसीने की जगह अपना खून बहा दूंगा और आपसे आगे बढ़कर इतनी तलवारें चलाऊंगा कि मेरे दोनों हाथ कटकर गिर जाएं। जैनब, शहरबानो और घर के अन्य लोग आते हैं। जैनब, अब्बास बातें ना करो हुसैन से, भैया मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप यह इरादा तर्क कर दीजिए और मदीने में रसूल की कब्र से लगे हुए जिंदगी बसर कीजिए और अपनी गर्दन पर इस्लाम की तबाही का इल्ज़ाम न लीजिए। हुसैन, जैनब ऐसी बातों पर तुफ है, जब तक ज़मीन और आसमान कायम है मैं यजीद की बैयत नहीं मंजूर कर सकता, क्या तुम समझती हो कि मैं गलती पर हूँ? जैनब, नहीं भैया आप गलती पर नहीं हैं, अल्लाह ताला अपने रसूल के बेटे को गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता, मगर आप जानते हैं कि ज़माने का रंग बदला हुआ है, ऐसा न हो लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हों। हुसैन, बहन इंसान सारी दुनिया के ताने बर्दाश्त कर सकता है पर अपने ईमान का नहीं, अगर दुनिया अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि मेरे बैयत न लेने से इस्लाम में तफरका पड़ जाएगा तो यह समझ लो कि इत्तिफाक कितनी ही अच्छी चीज़ हो लेकिन रास्ती उससे कहीं अच्छी है, रास्ती को छोड़कर मेल को कायम रखना वैसा ही है जैसे जान निकल जाने के बाद जिस्म कायम रखना, रास्ती कौम की जान है, उसे छोड़कर कोई कौम बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। इस बारे में मैं अपनी राय कायम कर चुका, अब तुम लोग मुझे रुखसत करो। जिस तरह मेरी बैयत से इस्लाम का वकार मिट जाएगा उसी तरह मेरी शहादत से उसका वकार कायम रहेगा, मैं इस्लाम की हुरमत पर निसार हो जाऊंगा। शहरबानो रोकर, क्या आप हमें अपने कदमों से जुदा करना चाहते हैं? अली अकबर, अब्बा जान अगर शहीद ही होना है तो हम भी वह दर्जा क्यों ना हासिल करें? या अमीर, हम आपके कदमों पर निसार होना ही अपनी ज़िंदगी का हासिल समझते हैं, आप न ले जाएंगे तो हम जबरन आपके साथ चलेंगे। अली असगर, अब्बा मैं आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ता था, आप यहाँ छोड़ देंगे तो मैं नमाज कैसे पढ़ूँगा? जैनब, भैया क्या कोई उम्मीद नहीं, क्या मदीने में रसूल के बेटे पर हाथ रखने वाला, रसूल की बेटियों की हुरमत पर जान देने वाला, हक पर सिर कटाने वाला कोई नहीं है? इसी शहर से वह नूर फैला जिसने सारा जहान रोशन हो गया, क्या वह हक की रोशनी इतनी जल्द गायब हो गई? आप यहीं से हिजाज और यमन की तरफ कासिदों को क्यों नहीं रवाना फरमाते? हुसैन, अफसोस है जैनब, खुदा को कुछ और ही मंजूर है, मदीने में हमारे लिए अब अमन नहीं है, यहाँ अगर हम आज़ादी से खड़े हैं तो यह वलीद की सराफत है, वरना यजीद की फौजों ने हमको घेर लिया होता, आज मुझे सुबह होते होते यहाँ से निकल जाना चाहिए, यजीद को मेरे अजीजों से दुश्मनी नहीं, उसे खौफ सिर्फ मेरा है, तुम लोग मुझे यहाँ से रुखसत करो, मुझे यकीन है कि यजीद तुम लोगों को तंग न करेगा, उसके दिल में चाहे न हो मगर मुसलमान के दिल में गैरत बाकी है, वह रसूल की बहू बेटियों की आबरू लूटते देखेंगे तो उनका खून जरूर गर्म हो जाएगा। जैनब, भैया यह हरगिज न होगा, हम भी आपके साथ चलेंगे, अगर इस्लाम का बेटा अपनी दिलेरी से इस्लाम का वकार कायम रखेगा तो हम अपने सब्र से, जब्त से और बर्दाश्त से उसकी शान निभाएंगे। हम पर जिहाद हराम है लेकिन हम मौका पड़ने पर मरना जानती हैं, रसूल पाक की कसम आप हमारी आंखों में आंसू न देखेंगे, हमारे लबों से फरियाद न सुनेंगे और हमारे दिलों से आह न निकलेगी, आप हक पर जान देकर इस्लाम की आबरू रखना चाहते हैं तो हम भी एक बेदीन और बदकार की हिमायत में रहकर इस्लाम के नाम पर दाग लगाना नहीं चाहती। सिपाहियों का एक दस्ता सड़क पर आता दिखाई पड़ता है। हुसैन, अब्बास यजीद के आदमी हैं, वलीद ने भी दगा दी, आह हमारे हाथों में तलवार भी नहीं, ऐ खुदा मदद, अब्बास कलाम पाक की कसम ये मर्दूद आपके करीब न आने पाएंगे। जैनब, भैया तुम सामने से हट जाओ। हुसैन, जैनब घबराओ मत, आज मैं दिखा दूंगा कि अली का बेटा कितनी दिलेरी से जान देता है। अब्बास बाहर निकलकर फौज के सरदार से, ऐ सरदार किसकी बदनसीबी है कि तू उसके नज़दीक जा रहा है? सरदार, या हजरत हमें शहर में गश्त लगाने का हुक्म हुआ है कि कहीं बागी तो जमा नहीं हो रहे हैं? हुसैन, अब देर करने का मौका नहीं है, चलूँ अम्मा जान से रुखसत हो लूँ फातिमा की कब्र पर जाकर। ऐ मातरे जहान, तेरा बदनसीब बेटा जिसे तूने गोद में प्यार से खिलाया था, जिसे तूने सीने से दूध पिलाया था, आज तुझसे रुखसत हो रहा है और फिर शायद उसे तेरी जियारत नसीब न हो। रोते हैं मदीने के सब नगरवासियों का प्रवेश सब। ऐ अमीर, आप हमें अपने कदमों से क्यों जुदा करते हैं? हम आपका दामन न छोड़ेंगे। आपके कदमों से लगे हुए गुर्बत की खाक छानना इससे कहीं अच्छा है कि एक बदकार और जालिम खलीफा की शक्तियाँ झेलें। आप नबी के खानदान के आफताब हैं, उसकी रोशनी से दूर होकर हम अंधेरे में खौफनाक जानवरों से क्यों कर अपनी जान बचा सकेंगे? कौन हमें हक और दीन की राह सुझाएगा? कौन हमें अपनी नसीहतों का अमृत पिलाएगा? हमें अपने कदमों से जुदा न कीजिए। रोते हैं हुसैन। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ से खुद नहीं जा रहा हूँ, मुझे तकदीर लिए जा रही है। मुझे वह दर्दनाक नज़ारा देखने की ताब नहीं है कि मदीने की गलियाँ इस्लाम और रसूल के दोस्तों के खून से रंगी जाए। मैं प्यारे मदीने को उस तबाही और खून से बचाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी यही आखिरी सलाह है कि इस्लाम की हुर्मत कायम रखना, माल और जर के लिए अपनी कौम और अपनी मिल्लत से बेवफाई न करना। खुदा के नज़दीक इससे बड़ा गुनाह नहीं है। शायद हम फिर मदीने के दर्शन न हों, शायद हम फिर इन सूरतों को न देख सकें। हाँ, शायद फिर हमें उन बुजुर्गों की सूरत देखनी नसीब न हो जो हमारे नाना के शरीक और हमदर्द रहे, जिनमें से कितनों ने ही मुझे गोद में खिलाया है। भाइयों, मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं है कि उस रंज और गम को जाहिर कर सकूं जो मेरे सीने में दरिया की लहरों की तरह उठ रहा है। मदीने की खाक से जुदा होते हुए जिगर के टुकड़े हुए जाते हैं। आपसे जुदा होते आँखों में अंधेरा छा जाता है, मगर मजबूर हूँ। खुदा की और रसूल की यह मंशा है कि इस्लाम का पौधा मेरे खून से सींचा जाए, रसूल की खेती रसूल की औलाद के खून से हरी हो, और मुझे उनके सामने सिर झुकाने के सिवा और कोई चारा नहीं। नागरिक या अमीर, हमें अपने कदमों से जुदा न कीजिए। हाय अमीर, हाय रसूल के बेटे, हम किसका मुंह देखकर जिएंगे? हम क्यों कर सब्र करें? अगर आज न रोएं तो फिर किस दिन के लिए आंसुओं को उठा रखें? आज से ज़्यादा मातम का और कौन दिन होगा? हुसैन, मोहम्मद की कब्र पर जाकर। ऐ रसूल खुदा, रुखसत, आपका नवासा मुसीबत में गिरफ्तार है, उसका बेड़ा पार कीजिए। सब लोग मुझे छोड़ के पहले ही सिधारे, मिलता नहीं आराम नवासे को तुम्हारे। खादिम को कोई अमन की अब जा नहीं मिलती, राहत कोई साइत मेरे मौला नहीं मिलती। दुख कौन सा और कौन सी ईजा नहीं मिलती, हैं आप जहां राह वह मुझको नहीं मिलती। दुनिया में मुझे कोई नहीं और ठिकाना, आज आखिरी रुखसत को गुलाम आया है नाना। बच जाऊं जो पास अपने बुला लीजिए नाना, तुर्बत में नवासे को छिपा लीजिए नाना, भाई की कब्र पर जाकर। सुन लीजिए शब्बीर की रुखसत है बिरादर, हजरत को तो पहलू हुआ अम्मा का मयसर। कब्रें भी जुदा होंगी यहाँ अब तो हमारी, देखें हमें ले जाए कहाँ खाक हमारी। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ एक चींटी भी की भी जान खतरे में पड़े। अपने अजीजों से, अपनी मस्तूरात से, अपने दोस्तों से यही सवाल है कि मेरे लिए जरा भी कम न करो। मैं वहीं जाता हूँ जहाँ खुदा की मर्जी लिए जाती है। अब्बास, या हजरत, खुदा के लिए हमारे ऊपर यह सितम न कीजिए, हम जीते जी आपसे जुदा न होंगे। जैनब, भैया मेरी जान तुम पर फिदा हो, अगर औरतों को तुमने छोड़ दिया तो लौटकर उन्हें जीता न पाओगे। तुम्हारी तीनों फूल सी बेटियाँ गम से मुरझाई जा रही हैं, शहर बानू का हाल देख ही रहे हो। तुम्हारे बगैर मदीना सुना हो जाएगा और घर की दीवारें हमें फाड़ खाएंगी। हमारे ऊपर इस बदनामी का दाग न लगाओ कि मुसीबत में रसूल की बेटियों ने अपने सरदार से बेवफाई की। तुम्हारे साथ के फाके यहाँ के मीठे लुकमों से ज़्यादा मीठे मालूम होंगे। जिस्म को तकलीफ होगी पर दिल को तो इत्मीनान रहेगा। अली अकबर। अब्बा, मैं इस मुसीबत का सारा मजा आपको अकेले न उठाने दूंगा, इसमें मेरा भी हिस्सा है। कौन हमारे नेजों की चमक देखेगा, किसे हम अपनी दिलेरी के जौहर दिखाएंगे? नहीं, हम यह गम की दावत आपको अकेले न खाने देंगे। अली असगर, अब्बा मुझे अपने आगे घोड़ों पर बिठाकर रास मेरे हाथों में दे दीजिएगा, मैं उसे ऐसा दौड़ाऊंगा कि हवा भी हमारी गर्द को न पहुंचेगी। हुसैन, हाय, अगर मेरी तकदीर की मंशा है कि मेरे जिगर के टुकड़े मेरी आंखों के सामने तड़पें, तो मेरा क्या बस है। अगर खुदा को यही मंजूर है कि मेरा बाग मेरी नज़रों के सामने उजाड़ा जाए, तो मेरा क्या चारा है। खुदा गवाह रहना कि इस्लाम की इज्जत पर रसूल की औलाद कितनी बेदर्दी से कुर्बान की जा रही है।